मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे खनिज और खदान से संबंधित एक विधेयक पर बात करूंगा और इसके बाद फिर जो दूसरी छोटी छोटी जो खबरें हैं उन पर हम लोग आएंगे। तो शुरुआत ही करते हैं आज के मुख्य विषय से, क्योंकि यह जो मुख्य विषय है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। और इसका विषय है कि कल संसद में सरकार ने एक विधेयक पेश किया है जिसका नाम है खदान एवं खनिज, ब्रैकेट में है विकास और विनियमन विधेयक 2021। देखिए, इसके नाम से ही बहुत स्पष्ट है कि इसके तहत इस बात की व्यवस्था की गई है कि किस तरीके से हम अपने देश के खनिज के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और जब बढ़ाने की बात होगी तो स्वाभाविक है कि आपको मालूम है कि जो खनिज के जो खदानें होती हैं उनकी नीलामी की जाती है, तो इसमें व्यवस्था की गई है कि जो नीलामी के जो ब्लॉक होते हैं यानी जो खदानों के जो ब्लॉक होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। यूं कह लीजिए कि नीलामी में खनिज ब्लॉकों की संख्या बढ़ाना और खनिज उत्पादन को बढ़ाना इस विधेयक का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर पलट करके देखेंगे, स्पेशली मेन एग्जामिनेशन की दृष्टि से, तो आप पाएंगे कि इस तरह के जो विधेयक होते हैं या इस तरह के जो विषय होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका कारण है, देखिए, पहला कारण तो इसका यही है कि ये खनिज से संबंधित है। दूसरा कारण है कि ये कहीं ना कहीं पर्यावरण से भी संबंधित है। आप देखिए कि उत्तराखंड में अभी जो स्थितियां आई हैं, जो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि वहां खदान से खनिज पदार्थ निकाले जा रहे हैं, तो वहां की जो मिट्टियां हैं, चट्टानें हैं, वो कमजोर होती जा रही हैं, तो सीधे सीधे इसका पर्यावरण से भी संबंध है। और तीसरा, इसका वहां की जो जनजातियां हैं उनसे भी संबंध है, क्योंकि वहां की जनजातियों के जीवन पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, इसलिए यह विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कल के रेडियो न्यूज में आपने सुना होगा कि इस विधेयक के बारे में जो खबर है उसको अपेक्षाकृत विस्तार के साथ लिया गया है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, 3-4 पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए, इस पर मुझे लगता है कि आगे चलकर के आपको आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स डेफिनेटली पढ़ने को मिलेंगे। शशि थरूर जी ने इसका विरोध किया, इस विधेयक का, और उनके विरोध करने के 3 प्रमुख बिंदु थे। इन तीनों प्रमुख बिंदु आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला बिंदु ये उन्होंने कहा था कि ये संविधान के प्रावधान के अनुरूप नहीं है, यानी कि जो ये विधेयक पेश किया गया है इसमें संविधान का पालन नहीं किया गया है। संविधान का पालन नहीं किया गया है जब वो ये कह रहे थे, तो उनके पीछे मकसद ये था कि भाई ये खनिज और खदान जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, लेकिन ये राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए, राज्य देखें इस पर वो क्या कानून बनाते हैं और कैसे अपनी व्यवस्था करते हैं। तो जबरदस्ती के जब हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में रह रहे हैं तो उस फेडरल स्ट्रक्चर के तहत केंद्र क्यों इस पर कानून बना रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुकूल नहीं है, यानी कि संविधान के जो हमारे प्रावधान है उसका पालन नहीं किया गया है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसके कुछ नियम हैं, इस विधेयक में उन नियमों का उल्लंघन होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, जैव विविधता अभी एक अलग टॉपिक हो गया कि उसके तहत क्या प्रावधान है। देखिए, उसका एक जो प्रावधान है आपको मालूम है कि आपको बकायदे उसका आकलन कराना पड़ता है कि अगर यहां यह किया जा रहा है तो उससे कितना नुकसान होगा प्राकृतिक वातावरण का, जैव विविधता का, और फिर उसकी भरपाई कैसे की जा सकेगी, और इसके लिए बकायदे वहां के स्थानीय लोगों से पूछा जाता है, तब जाकर के कहीं इसको स्वीकृति दी जाती है। तो शशि थरूर जी ने कहा है कि ये जो विधेयक लाया गया है, इस विधेयक में जैव विविधता के जो नियम हैं उनका पालन नहीं किया गया है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, उन्होंने कहा कि जो जीवन का अधिकार, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, इसके माध्यम से उसका उल्लंघन होता है। वही जैसा कि मैंने कहा कि वो आदिवासी और जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादातर, खासकर जंगलों में और उस तरह की जो भूमि है वहां जनजातियां रहती हैं, और वहीं इस तरह के खदान तैयार किए जा रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, तो उनके हम जो जीविका का जो साधन है उस पर आघात कर रहे हैं, वहां के पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इस तरह से जो फंडामेंटल राइट्स से जीने का अधिकार हम उनका उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट उन्होंने रेज किए जो आपके दिमाग में रहने चाहिए। सरकार ने इसका उत्तर दिया और जो उत्तर दिया है फ्रेंड्स, वो जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तर है जो न्यूज में है, जैसा कि मैंने कहा कि आगे अभी शायद अखबारों में इसके बारे में आपको और पढ़ने को मिलेगा, तो जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि नहीं, संविधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। यह भी तथ्य आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि जो ये विधेयक लाया गया है ये संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया गया है। न्यूज में इतने 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। ये 7वीं अनुसूची क्या है? देखिए जब भी आप तैयारी करते हैं तो तभी आप परफेक्ट तैयारी कर सकते हैं कि आपको अब यहां मालूम हो कि भाई ये 7वीं अनुसूची है क्या। ये नहीं कि बस आपने रट लिया 7वीं अनुसूची और बात खत्म हो गई, या हो सकता है आपको पहले से भी मालूम हो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की तो आपको अच्छी तैयारी करनी ही पड़ती है। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है, देखिए उसका विषय क्या है, उस शेड्यूल के अंतर्गत मूलतः राज्य और केंद्रों में विषयों का विभाजन किया गया है, बंटवारा किया गया है। यानी कि उसमें बहुत डिटेल में बताया गया कि ये ऐसे विषय हैं जिस पर संघ यानी कि केंद्र सरकार कानून बनाएगी, ये ऐसे ऐसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाएंगी, और ये ऐसे ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य, जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है। लेकिन यदि केंद्र के कानून के विरोध में राज्य सरकारों का कानून है तो राज्य सरकारों का कानून निरस्त माना जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार का कानून ही प्रिवेल करेगा। देखिए अभी जो किसानों का जो आंदोलन हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं आपको इसी तरह की एक भावना दिखाई दे रही कि केंद्र सरकार ने कृषि पर कानून बनाया, राज्य सरकारें भी बना सकती हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने कानून बना करके उसे राज्यों पर थोपने की कोशिश की, जो एक आलोचना के रूप में कही जा रही है। तो खनिज के बारे में भी यहां ये बात हो सकता है कि आगे कही जाए, लेकिन संवैधानिक प्रावधान के तो अनुकूल है क्योंकि केंद्र सरकार, एक चूंकि समवर्ती सूची का विषय है तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहूंगा कि इस पर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। आगे इस पर जब भी लेख आएंगे, एडिटोरियल कमेंट्स आएंगे, तो आप उन्हें ध्यान से पढ़ें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते चलें। कोई ताज्जुब नहीं कि प्री एग्जामिनेशन में भी इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि विधेयक लाया गया है। देखिए लोकसभा में पारित हो ही जाना है, राज्यसभा में भी अब कोई इस विधेयक को पारित होने में दिक्कत नहीं है, तो ये मान करके चलिए कि यह विधेयक बकायदे कानून बनेगा ही बनेगा, इस बात की संभावना पूरी है। और आगे देखते हैं कि क्या होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फ्रेंड्स अब मैं आता हूं दूसरी खबरों पर, आज उनकी संख्या काफी है। सरकार ने देखिए एक स्टेटमेंट दिया है, संसद में स्टेटमेंट दिया है कि जो पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थ में देखिए ढेर सारी चीजें आ जाती है ना, कच्चा तेल आ जाता है, डीजल पेट्रोल तो आते ही है, विमान में जो ईंधन यूज किया जाता है वो है, नेचुरल जो गैसेस है वो सब आते हैं, तो इन्हें जीएसटी में नहीं लाया जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के दायरे में नहीं लाया जा रहा है। जब आप इस तरह की खबरें सुनते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भई ये बात क्यों कही जा रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, इसको लेकर के अब अखबारों में आलोचना भी होने लगी है। आपने आज के अखबारों में पढ़ा होगा कि किस तरह से महंगाई की दर काफी बढ़ गई है ना, पिछले लगभग 2 साल से सबसे ऊंची महंगाई की दर है। तो जब आप पेट्रोल और खासकर पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाएंगे तो वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि परिवहन की कीमत बढ़ रही है, ये तो होता ही है, और इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो कुछ लोग ये मांग करने लगे थे कि नहीं, ये जो पेट्रोलियम पदार्थ है ये जीएसटी के दायरे में ले आए जाएं। देखिए जीएसटी के दायरे में लाने से क्या होगा कि इस पर जो शुल्क लगाया जाता है, जो टैक्स लगाया जाता है, वो फिक्स हो जाएगा कि 10% 15% 20% ज्यादा 28% आप टैक्स लगा सकते हैं, तो पूरे देश में भी लगभग इसकी कीमतें एक जैसी हो जाएंगी। लेकिन अभी इसे इस दायरे से बाहर रखा गया है और राज्यों को यह पूरा अधिकार दिया गया है कि आप इन वस्तुओं पर, यानी जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इन पर आप अपनी तरफ से टैक्स लगा सकते हैं। अब राज्य सरकारें मनमाना इन पर टैक्स लगाती हैं, इसलिए आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में इनकी कीमतें भी अलग अलग हैं, वो मनमाना टैक्स लगाती हैं, और राज्यों की मजबूरी यह है कि इससे इनको बहुत ज्यादा आय होती है, और अगर इनकी आय कम हो जाए तो इन्हें एक अलग से मुसीबत हो जाएगी। तो अभी ये राज्यों पर ही छोड़ दिया गया है कि ठीक है आप लोग चलिए अपने अपने ढंग से टैक्स लगाइए, लेकिन मंत्री ने ये कहा भी है कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने टैक्स को थोड़ा कम करें, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो इसके पीछे फ्रेंड्स ये कारण था। एक अच्छी खबर है खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और जो कंपनी सेक्रेटरीट का कोर्स कर रहे हैं। अब ये कहा गया है कि जो सीए हैं और जो आपके कंपनी सेक्रेटरीट का कोर्स करेंगे उन्हें अब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री की मान्यता मिलेगी। तो एक अच्छी खबर है कि अगर आप सीए बन जाते हैं इसका मतलब है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर और वो ये है फ्रेंड्स कि जो अमेरिका है वो हमारे लिए अब दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश। अभी तक यह स्थान सऊदी अरब को प्राप्त था। देखिए ये चीजें बदलती रहती हैं। जब मैं सोचे कि कहें ना कुछ कारण ऐसे होते हैं, कहीं रेट बढ़ जाते हैं, कहीं सरकार की नीतियों में परिवर्तन हो जाता है, कहीं संबंधों में कोई तनाव या घनिष्ठता आ जाती है, तो उससे ये बातें बदलती रहती हैं। तो अब जो सबसे अधिक तेल जिस देश से हम मंगा रहे हैं, मतलब प्रथम स्थान पर है इराक और दूसरे स्थान पर अब आ गया है अमेरिका। ये अपडेट है क्योंकि कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि सबसे ज्यादा आप आरोही क्रम अवरोही क्रम में बताइए कि किस क्रम से तेल निर्यात किया जाता है भारत के लिए, भारत कैसे किन किन देशों से कितना तेल आयात कर रहा है, प्रथम स्थान किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है, तो इसे आपको अपडेट कर लेना चाहिए। दोस्तों एक सिंपल सी और खबर मैं आपको देना चाहूंगा जो जुडिशरी से संबंधित है और इसको लेकर के परसों अखबारों में खबर भी छपी थी लेकिन मैंने अभी उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया था, मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। और खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए एक जजमेंट को देखा और उस जजमेंट को पढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट चौकन्ना हो गया और खासकर उसके जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये कमेंट किया कि ये जो भाषा है इस भाषा को मैं नहीं समझ पा रहा हूं और इस भाषा को समझने के लिए मुझे बाम लगाना पड़ा, यानी कि मेरे सिर में दर्द हो गया लेकिन ये जजमेंट समझ में नहीं आया। ये एक घटना है। इस घटना से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं और निष्कर्ष यह है कि जो न्यायालय की जो भाषा है इस तरह की होनी चाहिए कि वो लोगों की समझ में आ सके, क्योंकि वो लोगों के लिए दिया गया जजमेंट है और पता लगा कि जिसको जिसका आप फैसला कर रहे हैं उसी को समझ में नहीं आ रहा है। कल्पना करके देखिए कि न्यायाधीश को समझ में नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, तो आम आदमी की क्या हैसियत होगी। और दूसरी बात यह है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं कानून के रूप में काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए भी बहुत जरूरी है कि उसे मतलब जो वकील हैं और जज हैं वो तो समझे ही समझे और यहां तक कि आम आदमी की भी समझ में आए। तो भारत में भाषा को लेकर के सच पूछे तो आजादी के बाद से अब तक लगातार इस तरह का संकट बना हुआ है और इसके केंद्र में है अंग्रेजी, आप जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे कि अब नई शिक्षा नीति में जब ये व्यवस्था की गई है कि यहां तक कि आपको बकायदे आपकी जो क्षेत्रीय भाषा होगी, मातृभाषा जिसे आप कह लीजिए, कि उसमें आपको शिक्षा दी जाएगी। अब जो हमारे टेक्निकल एजुकेशन है उनके लिए भी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचलन बढ़ रहा है, आपके NIT और जो दूसरे एग्जामिनेशन उनमें भी इस तरह की व्यवस्थाएं करती हुई सरकार दिखाई दे रही है, कुछ में कर भी दिया गया है। तो आप यूं कह लीजिए कि धीरे धीरे शायद जो भाषा की जकड़न है भारत के ऊपर वो धीरे 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 कहीं ना कहीं ढीली पड़ रही है और ये एक अच्छी बात है। तो दोस्तों इस तरह से ये थी कुछ छोटी छोटी खबरें। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। और हमारे जो ऑनलाइन क्लासेस के जो दो स्टूडेंट हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और इनके नाम हैं बिजेश मेहता और प्रमोद कुमार। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और इन्हीं में से तीन मित्रों के नाम हैं अंकित राज मुंबई से, प्रशांत कपाड़िया फतेहपुर उत्तर प्रदेश से और नेहा सिंह भोजपुर बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।